ओम शांति। हम सब आत्माएं साहबजादे सो सहजादे बनने वाली विशेष आत्माएं हैं। हम आत्माओं का भाग्य स्वयं भगवान ब्रह्मा बाप के द्वारा बना रहा है। संगम युग है ही भाग्य बनाने का युग, क्योंकि इसी युग में भाग्य विधाता स्वयं अवतरित होकर समय को भी वरदान होता है कि इस समय आत्मा एक का पदम गुना प्राप्त करके भाग्यवान बन सकती है। भाग्य बनाने का सबसे सुंदर समय होता है अमृत बेला। अमृत बेला का समय ऐसा है कि इस समय आत्मा परम आत्मा बाप से और आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा सो मां के द्वारा आप जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। अपने भाग्य को जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं, क्योंकि अमृत बेले मां और बाप अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का रूप बहुत प्यारा होता है। अमृत बेले के समय ब्रह्मा बाप बच्चों की लंबी रेखा खींचने के लिए बैठा रहता है। उस समय बच्चे ब्रह्मा बाप से स्नेह के आधार से जितनी लंबी रेखा खींचवाना चाहें ब्रह्मा बाप खींच सकता है। अमृत बेले ब्रह्मा बाप का रूप लवफुल होता है, लाफुल नहीं, कि इस बच्चे का यह कर्म है इसके कारण इसका ऐसा पद है, यह अमृत बेले हिसाब नहीं है। उस समय आप जितनी लंबी भाग्य की रेखा खिंचवाना चाहते हो, ब्रह्मा बाप के द्वारा स्नेह के आधार से खिंचवा सकते हो। उस समय शिव बाप का रूप भी बड़ा भोला होता है। उस समय शिव बाप भी भोले भगवान के रूप में होते, ऑफिशियल नहीं होते। उस समय आप शिव बाबा से स्नेह के आधार से अपने किए हुए पाप कर्मों को बख्शवा सकते हो, क्षमा ले सकते हो। उस समय भगवान का रूप बड़ा भोला होता है। भगवान क्षमा कर देगा, लेकिन अमृत बेले स्नेह के आधार से। दूसरी बात, अमृत बेले शिव बाप विशेष रूप से बच्चों की किरणाओं के द्वारा पालना करता है, सर्व शक्तियों को वरदान के रूप में बच्चों को देता है। ये सर्व शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त करने का समय अमृत बेला है। ब्रह्मा मां अमृत बेले विशेष बच्चों की स्नेह की पालना करती है। मां के रूप में जैसे लौकिक दुनिया में मां बच्चों को सुबह सुबह नहला धुला करके खिला पिला करके और दोपहर का भी भोजन बच्चे को देकर स्कूल भेजती है। जब तक बच्चा वापस आए तब तक के लिए माँ बच्चे को समर्थ बनाकर भेजती है। ऐसे ही अमृत बेले ब्रह्मा माँ उन स्नेही बच्चों को जो अमृत बेले विशेष स्नेह के आधार से ब्रह्मा मां या शिव बाप को याद करते हैं, ऐसे स्नेही बच्चे को ब्रह्मा मां वतन में इमर्ज करके इष्ट्रा सकाश देती है, इष्ट्रा बल भरती है, जिससे वो बच्चा सारे दिन के लिए समर्थ बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। यह विशेष पालना ब्रह्मा मां अमृत बेले वतन में बच्चों की करती है। अमृत बेले के समय को अमर बनने का समय कहा गया है। अमृत बेले का समय आदि काल का समय है। वह दिन के शुरू होने का समय, दिन के अर्थात आपकी दिनचर्या शुरू होने का समय है। अगर आपका अमृत बेला श्रेष्ठ बन गया, विशेष बन गया, तो आदि का समय विशेष होने के कारण मध्य और अंत भी विशेष रहेगा। जिस आत्मा ने अमृत बेले को सफल कर लिया, वो सारा दिन सफल रहेगी। लेकिन कई ब्राह्मण बच्चे अमृत बेले के महत्व को या तो जानते नहीं हैं और या तो जानते हुए उसको सफल करने का पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। अगर आपको नंबर वन आत्मा के साथ राज घराने में आना है, तो आप अमृत बेले को पावरफुल बनाओ। देखो मम्मा बाबा जब अमृत बेले 4 बजे उठने का नियम भी नहीं बना था, तब भी मम्मा बाबा 2 बजे उठकर योग करते थे। जब 4 बजे नियम नहीं बना था तब भी 2 बजे उठकर योग करते थे। इसलिए नंबर वन विश्व महाराजन विश्व महारानी बने। इस समय संगम युग का आदि काल और सतयुग का आदि काल दोनों का बड़ा गहरा कनेक्शन है। 8-7-73 की मुरली में आप पढ़ लेना जो बात बता रहे हैं। इस मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि जो बच्चा इस समय अर्थात संगम युग पर जो बच्चा यहाँ जितनी देर से उठता है, जितनी देर से, वो उतनी देर से सतयुग में आएगा। और जो बच्चा जितना घंटा यहाँ कम होता है सतयुग में उसके उतने जन्म कम होंगे। और जो बच्चा सुबह 4 से 5 योग करता ही नहीं है, वो तो स्वप्न भी न देखे कि हम सतयुग में आ सकते हैं, आएगा ही नहीं। इतना अमृत बेले का महत्व इस समय संगम युग पर है। कई बच्चे 2 बजे उठकर योग करते हैं। 2 बजे उठना बहुत अच्छी बात है। 2 बजे उठकर अगर कोई बच्चा योग करता है तो ये तो ऐसे है जैसे कि ओवर टाइम करना, ओवर टाइम का डबल पैसा मिलता है। अगर कोई 2 बजे उठकर योग करता है तो डबल कमाई होगी, लेकिन ओवर टाइम तब होती है जब ड्यूटी का टाइम करने के बाद करे तब ओवर टाइम कहलाती है। कई बच्चे 2 बजे उठकर 4:15 तक योग करते हैं फिर सो जाते हैं, उस योग से कोई फायदा नहीं। अगर 4 से 5 योग न किया तो 2 बजे का उठा हुआ आपका योग ओवर टाइम न होकर पार्ट टाइम होगा, पार्ट टाइम का थोड़ा पैसा मिलता है, थोड़ी प्राप्ति होगी। इसलिए जो भगवान ने नियम बनाए हैं 4 बजे से 5 बजे या 4:45 तक योग करना, इस नियम में पक्के रहो। यह अमृत बेले 4 से 5 जो योग जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से और जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक अगर इस नियम को निभा रही है तो गारंटी है कि सतयुग के आदि में अवश्य आएगी। और जो आत्मा अमृत बेले उठकर 4 से 5 योग करती है और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती है, वो आत्मा सतयुग के आदि में सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य करेगी। अगर अमृत बेले उठकर सर्व प्राप्तियों का अनुभव आत्मा को नहीं होता है, कभी होता कभी नहीं होता, तो आदि में अवश्य आएगी लेकिन सर्व प्राप्ति संपन्न राज्य न मिलकर राज घराने में कुछ जन्म के बाद आएगी। तब तक उसको प्रजा या नौकर चाकर बनना पड़ेगा। इस समय जितनी प्राप्ति सतयुग में उस आधार से उसका जन्म। अगर आप यह एक नियम पक्का कर लो कि मुझे अमृत बेले 4 से 5 योग करना ही है। इस नियम की पालना के रिटर्न में भगवान की आज्ञा की पालना करने के कारण भगवान के आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की दुआ आपको सहज ही महान बना दे। वैसे भगवान का आशीर्वाद सदा सब पर है ही है, लेकिन उसको मिलता है जो उसके पात्र होता है, लायक होता है, उसको ही मिलता है। तो लायक बनने का आधार है आज्ञा की पालना करना, और पहली आज्ञा है अमृत बेले उठकर बाप को याद करो। ये जीवन का लक्ष्य मैं समझता हूं हर ब्राह्मण आत्मा ने अपनाया होगा। अगर अभी तक किसी आत्मा से ऐसा हुआ हो जो कारणे अकारणे अमृत बेले का योग मिस हुआ हो, किसी का भी हाथ नहीं उठवाते हैं, तो आज आप बाबा के कमरे में जाकर के बाबा से माफी लेकर के और प्रतिज्ञा कर लो कि अब बाबा आज से अमृत बेले का योग मिस नहीं करेंगे, तो आप नंबर आगे ले सकते। लेकिन यह आज से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेना, फिर मिस नहीं होने देना। हमें तो अपने जीवन का जहां तक स्मृति है 35 साल हो रहा है, आज तक अमृत बेले का योग मिस नहीं हुआ है। ये विशेष लक्ष्य रखा है। लगे या न लगे वो अलग सब्जेक्ट रहा है, लेकिन मिस नहीं होने दिया है। जो अपने हाथ में है वो पुरुषार्थ रखना है। तो आप सब भी ये आज से विशेष लक्ष्य ले लेना, अमृत बेले उठकर बाबा को प्यार से याद करना, ठीक है? अमृत बेले अगर आपका महान बन गया तो सारा दिन महान बन जाएगा, हर एक को अनुभव होगा कि जिस दिन सुबह योग अच्छा लग जाता है उस दिन मुरली सुनने में भी मजा आता है। उस दिन अगर छोटी मोटी परिस्थितियां आ जाएं तो उसका भी डोंट केयर कर देते हैं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हर एक को अनुभव होगा। तो जैसे सारे दिन की दिनचर्या का आधार अमृत बेला है, बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर बताया था कि जैसे देखो ट्रेन जब चलती है, आप लोग ट्रेन में आए होंगे, चलो बाबा के पास। सारे दिन की दिनचर्या का प्रभाव अमृत बेला अर्थात आदि के आधार पर है। आदि को समर्थ बनाओ। कई बच्चे सुबह जब योग में बैठते हैं, उठकर आते हैं, तो अमृत बेला समर्थ नहीं बना पाते। योग में बैठेंगे या तो नींद आएगी, झुटका आएगा, या तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, और या तो आधा योग करके उठ के भाग जाएंगे। यह समर्थ क्यों नहीं बन पाता है? नींद क्यों आती है? व्यर्थ संकल्प योग के समय क्यों चलते हैं? योग करने का दिल क्यों नहीं कहता है? इसका कारण तीन है। तीनों में से कोई न कोई कारण होगा जो ये हमें जैसे हम आत्मा चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते। पहला कारण है, अगर आपका योग पावरफुल नहीं लगता है तो उसका कारण है कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा की है। अवज्ञा का दंड चढ़ता है, बोझ चढ़ता है, उसके कारण योग नहीं लगता, माथा भारी हो जाता है, आत्मा हल्की होकर उड़ नहीं पाती है, बाबा के पास बैठ नहीं पाती। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण कि आप योग करने बैठते हो लेकिन योग की जो यथार्थ विधि है उस विधि को छोड़ करके अपनी बुद्धि के अनुसार योग करते हो। योग करना बड़ी बात नहीं है लेकिन यथार्थ विधि से योग करना बड़ी बात है। अगर यथार्थ विधि से योग नहीं है तो प्राप्ति नहीं होगी। जैसे उदाहरण के रूप से मान लो आप अपने कमरे से यहाँ आप क्लास करने के लिए आ रहे थे, पैदल मान लो 10 मिनट का रास्ता था। आप अपने कमरे से निकले और जो रास्ता इधर आ रहा था वो रास्ता छोड़कर अगर आप दूसरे रास्ते पर दौड़ते भी रहते और घंटा भी दौड़ते तो क्या पहुंच सकते थे यहां? नहीं ना। तो चलना दौड़ना यह पर्याप्त नहीं है, लेकिन यथार्थ रास्ते पर चलना पर्याप्त था। तो ऐसे ही यथार्थ विधि से योग करने से प्राप्ति होती है। कई बच्चों की दोनों बात ठीक होगी, श्रीमत पर भी चलते होंगे, यथार्थ विधि से योग भी करते होंगे, फिर भी हो सकता है योग न लगे। सर्व प्राप्तियों का आत्मा अनुभव न कर पाए, इसका कारण है कि उस आत्मा के ऊपर पास्ट जन्मों के विकर्मों का बोझ बहुत ज्यादा है, जो भगवान से लेना चाहती है लेकिन वो विकर्म लेने नहीं देते। योग में बैठेंगे तो नींद आएगी या व्यर्थ संकल्प चलेंगे, मुरली सुनने बैठेंगे तो भी यही हालत होगी, क्योंकि भगवान देता इसी समय है। अगर सेवा करने जाएंगे तो वहां भी स्वभाव संस्कार का टकराव हो जाएगा, सेवा से जो दुआएं मिलनी चाहिए वो भी वहां नहीं मिल पाएंगी। ये है उस आत्मा के ऊपर पास्ट कर्मों का बोझ जो इस समय भगवान दे रहा है, लेकिन वो बोझ लेने नहीं देता है। जैसे एक छोटी सी कहानी है भक्ति की, लेकिन है बाबा के बच्चों की, दिखाते भक्ति मार्ग में। दुनिया में तो शिव शंकर को एक मानते हैं, तो दिखाते हैं कि एक बार शंकर के ढेर सारे भगत पूजा कर रहे थे तो पार्वती जी ने देखा तो उसमें कई भगत तो बड़े संपन्न थे और कई भगत बहुत गरीब थे। तो पार्वती जी ने शंकर को कहा कि आपके भगत इतने गरीब क्यों हैं? आप इन्हें संपन्न क्यों नहीं बनाते हो? कुछ तो संपन्न है। तो शंकर जी ने कहा कि ये तो इनके कर्मों का फल है। तो पार्वती जी ने कहा इनके कर्म का फल है वो तो राइट है, लेकिन ये तो आपके शरण में आए हैं, आप तो इनको दो। तो शंकर जी ने कहा मैं देता हूं, लेकिन इनके कर्म इनको लेने नहीं देते। तो पार्वती जी ने कहा अच्छा मेरे सामने दो, देखूं कैसे नहीं लेते हैं। तो शंकर जी ने कहा अच्छा आज मैं दूंगा, देखना ये लेते हैं या नहीं लेते। तो सब भगत पूजा करके वापस आ रहे थे तो पहले वो भगत उस रास्ते पर आए जो संपन्न थे, तो रास्ते में ढेर सारा सोना चांदी सब ढेर सारा भगवान ने रख दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं और उसके रिटर्न में आपको ये खजाना मैं दे रहा हूं। तो जो संपन्न थे उनको तो वो खजाना मिल गया और भरपूर हो गए। उसके बाद वो भगत आए जो गरीब थे, तो उनके लिए भी भगवान ने रास्ते पर ऐसे ही खजाना रख दिया और यही शब्द लिखा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, इस खजाने को स्वीकार करना। तो जो गरीब थे वो भगत जब आ रहे थे तो खजाने से थोड़ी दूर पहले ही उनके मन में संकल्प आया कि हम सब तो रोज इसी रास्ते से जाते हैं, कोई नया रास्ता तो है नहीं, आज हम आंखें बंद करके चलते हैं, देखे अंधे कैसे चलते। और आंखें बंद करके वो लोग चले और जब खजाना पार हो गया फिर आंखें खोल दिया, तो गरीब के गरीब रह गए। ठीक वही हालत बाबा के बच्चों की है। बाबा कब देता है? अमृत बेले योग के समय। तो जब योग करने आते हैं तो थोड़ी देर में ही ऐसे लटक जाते, और जब लास्ट का गीत बजता है जैसे सफेद लाइट होती है ऐसे बैठ जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो देखो जब भगवान दे रहा था तब सोए हुए थे, इसलिए गरीब रह गए। वो बेचारे सोने के लिए नहीं आए थे, लेकिन उनके ऊपर पास्ट कर्म का इतना बोझ है, जो जागृत अवस्था में रह नहीं पाते, बोझ उनको हल्का होने ही नहीं दे रहा है। दूसरा, जो गरीब थे जब और वो लोग आ रहे थे तो खजाने से थोड़ी दूर ही उनको संकल्प आया कि रोज इसी रास्ते से चलते हैं, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं, रोज इसी रास्ते पर जाकर क्या करेंगे, और खजाने से वंचित रह गए। तो यहां भी आकर बैठते हैं योग करने के लिए, लेकिन रास्ता बदल देते हैं, सोचते हैं मैं आत्मा हूं और अंदर संकल्प देह का है, सोचेंगे मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं, याद करेंगे इस दुनिया को, सोचेंगे मुझ आत्मा का सर्व संबंधी परमात्मा है, याद करेंगे लौकिक संबंधी को, रास्ता ही बदल देते हैं। जिस काम के लिए आए हैं वो काम छोड़कर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। दूसरे प्रकार के विचार ले आते। अब यह कोई जानबूझ करके नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऊपर विकर्मों का खाता इतना है जो भगवान से लेने नहीं दे रहा है। अब क्या करें फिर? है तो सबके ऊपर थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा है वो तो बदल जाता है, बहुत है वो मुश्किल पड़ता है। उस हिसाब किताब को चुकतू करने का साधन दो है, आप करके देखो। एक तो बाबा ने बताया था कि पास्ट जन्म के हिसाब किताब को खत्म करने का साधन है पावरफुल याद। पावरफुल याद अर्थात या तो लगन के अग्नि वाली याद या लाइट हाउस माइट हाउस वाली याद या बीज रूप की याद, इसको कहते हैं पावरफुल याद। या तो ऐसी याद की स्थिति बने, लेकिन प्रश्न तो वही है कि याद में ही मन नहीं टिकता तो स्थिति ये कैसे बनेगी। दूसरा फिर साधन है कि आपसे जितना हो सकता है उतना धन से सेवा ज्यादा करो, धन से सेवा ज्यादा करो। धन मन को खींचता है, जहां धन जाता है वहां मन जाता है। अपना एक गीत है, जहां होता है मानव का धन वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया मुझ में लगा लो अपना मन, अनुभव होगा। अभी कुछ नहीं, 5 रुपए की भी अगर अभी आपकी कोई चीज गिर जाए तो देखो उस 5 रुपए के पीछे कितना मन जाएगा। तो जहां धन जाता है वहां मन जाता ही जाता है। आप जितना कर सकते हो उतना धन से सेवा बढ़ा दो, जो कर रहे हो उससे आगे बढ़ो। हमारे सबके धन की सेवा में क्या है? पहले परिवार, अपना खर्चा, जब इन सब से बचा तो बाबा। पहले अपना कोटा पूरा करेंगे, परिवार का खर्चा देखेंगे, फिर कुछ बचा तो बाबा। जब बाबा को ही पीछे कर दिया है तो मिलेगा ही क्या? आप जानते हो आपका कितना खर्चा है, लेकिन उसमें पहले बाबा को रखो। बाबा कभी लेता नहीं है, देता ही है। निस्वार्थ भाव से बाबा के यज्ञ में देकर देखो, भविष्य तो पदम गुना है ही है, वर्तमान ही बाबा डबल करके देगा या नहीं देगा? वर्तमान में ही दे देगा, लेकिन देने की विधि है। एक तो निस्वार्थ भाव चाहिए, और दान का गायन है गुप्त दान महापुण्य। दाया हाथ दे और बाएं हाथ को पता न पड़े, उसको कहा जाता है गुप्त दान। इतना गुप्त होकर बाबा की भंडारी में या बाबा के घर में देकर देखो बाबा रिटर्न देता है या नहीं। और यह देना, क्योंकि धन दो चीज देता है, एक तो बल दूसरा फल। बल और फल, गुप्त दान से दो प्राप्ति है, बल और फल। बल क्या मिलता है? सर्व तरफ से बुद्धि योग हटकर एक बाप में लग जाए, इसका बल मिलता है उस दान से बाबा के द्वारा। और फल क्या मिलता है? संतुष्टता, संपन्नता, ये फल मिलता है गुप्त दान का। अगर गुप्त नहीं किया, दिया लेकिन प्रत्यक्ष कर दिया, प्रत्यक्ष करने का मतलब ही यही होता है कि जिसको भी दिया वो समझे कि हमने कुछ दिया है, रिटर्न हमारी महिमा हो। तो अगर प्रत्यक्ष किया तो बल नहीं मिलेगा लेकिन फल मिल जाएगा। क्या फल? महिमा। क्योंकि अगर दिया है तो बहन तो महिमा तो करेगी ही, जरूर करेगी, वो मिल गया लेकिन बल नहीं मिलेगा। सब तरफ से मन हटकर एक मीठे बाबा में लग जाए, वो नहीं हो पाएगा। तो यह जो विकर्मों का बोझा है, इसको हल्का करने की यह विधि अपना करके फिर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। अमृत बेले को पावरफुल बनाओ। पावरफुल बनाने की विधि है अमृत बेला। आपका पावरफुल बन जाए उसकी विधि है कि जैसे सारे दिन की दिनचर्या का आधार अमृत बेला है, ऐसे योग में आपका समर्थ संकल्प चले, श्रेष्ठ संकल्प चले, उसका आधार है आपका पहला संकल्प। आंख खुलते ही चेक करना, जो आपका संकल्प आता है आंख खुलते ही, कल चेक करके देखना, उस संकल्प का पूरा प्रभाव योग पर रहता है। तो आंख खुलते ही जो संकल्प आया उसका प्रभाव योग पर रहेगा। मैं समझता हूं तीन प्रकार के संकल्प आते होंगे। एक तो कोई सोकर उठते ही घड़ी देखता है कितना बजा है, कोई सोकर के उठते ही जो अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव मन के ऊपर था वो सोकर के उठते ही याद आता है, और कईयों को फिर पूर्व संस्कार के बस संकल्प आते हैं। तीन बातें होती हैं, तीनों की रिजल्ट देखो, जो सो करके उठते ही घड़ी देखते हैं, कल अनुभव करके देखना। वो जब योग में बैठेंगे तो हर 10 मिनट के बाद घड़ी देखेंगे, अभी कितना टाइम बाकी है, अभी कितना टाइम बाकी है। टाइम कॉन्शियस ही रहेंगे। और जो सो करके उठते ही अगले दिन की दिनचर्या का प्रभाव जो मन के ऊपर था वो याद आया, तो जब योग में बैठेंगे तो वही बातें याद आती रहेंगी, भूल नहीं पाएंगे। तीसरी बात, अगर आप शाम को हल्के होकर नहीं सोए हैं तो पूर्व संस्कार के जो देह भान के संस्कार हैं वो अमृत वेले योग में शरीर से डिटैच हो नहीं पाएंगे। अगर डिटैच नहीं हो पाए तो योग लगेगा नहीं। तो ये तीन बातें हैं जो अगले दिन की दिनचर्या के आधार से संकल्प आते हैं। तो अगर आंख खुलते ही आपका पहला संकल्प समर्थ आ जाए, श्रेष्ठ आ जाए, शक्तिशाली संकल्प आ जाए, तो आपका योग शक्तिशाली लग जाएगा। तो ऐसा कौन सा संकल्प है जो समर्थ है, सर्व प्राप्ति कराने वाला है? क्योंकि पहले संकल्प का महत्व इस लौकिक दुनिया में भी बहुत बड़ा है। आप सबने अक्सर करके यह शब्द सुना होगा कि अगर किसी दिन किसी के सामने बहुत परिस्थिति आ जाए तो मुंह से यही शब्द निकलता है, आज सो करके उठते ही पता नहीं किसका मुंह देखा था जो ऐसा हुआ। तो सो करके उठते ही जिस व्यक्ति का मुंह देखा उसकी जैसी स्थिति थी वैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। तो सो करके उठते ही जो याद आया वही तो दिखाई पड़ेगा, याद जो भी चीज आया वही तो दिखाई पड़ेगा। तो सो करके उठते ही आपका पहला संकल्प आना चाहिए। सो करके उठते ही बाप दादा गुड मॉर्निंग। सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग नहीं, बाप दादा गुड मॉर्निंग, मात पिता दोनों से गुड मॉर्निंग करनी, दुआएं दोनों से लेनी। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो आंख खुलते ही ऐसा कौन सा संकल्प आए जिससे दोनों से गुड मॉर्निंग एक साथ हो जाए, ब्रह्मा से भी और शिव बाबा से भी? क्योंकि अगर आप ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो आकारी बनना पड़ेगा, शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करो तो निराकारी बनना पड़ेगा। बिना निराकारी आकारी बने बिना दोनों से गुड मॉर्निंग हो नहीं सकती। कई बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं लेकिन क्या मुझ आत्मा की गुड मॉर्निंग बाप दादा तक पहुंचती भी है या सिर्फ हमने ही किया बस? अगर पहुंचती है तो उसका प्रूफ है आपने गुड मॉर्निंग की और आपकी गुड मॉर्निंग पहुंची, उसका प्रूफ है कि पहले ही संकल्प में खुशी और शक्ति की अनुभूति अवश्य होगी। ये गुड मॉर्निंग पहुंचने का प्रूफ है। तो किस विधि से दोनों से गुड मॉर्निंग हो? मुझ आत्मा की गुड मॉर्निंग दोनों तक पहुंचे उसकी विधि है कल से करके देखना। बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म लोक से आत्माएं उतरकर सतो प्रधान चोला धारण कर देव आत्मा कहलाती है, ऐसे आंख खुलते ही आपका पहला संकल्प आए कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग, मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हो ब्राह्मण आत्मा बन बाप दादा से मिलन मनाने जा रही हूँ। अच्छा मीठे बाप दादा गुड मॉर्निंग, ब्राह्मण के नाते ब्रह्मा बाप से गुड मॉर्निंग हो गई और आत्मा के नाते शिव बाबा से गुड मॉर्निंग हो गई। इस विधि से गुड मॉर्निंग करके फिर आप योग शुरू करो तो आपका योग समर्थ बन जाएगा, क्योंकि पहला संकल्प समर्थ है तो योग स्वतः ही समर्थ हो जाएगा। इस विधि से अमृत बेले को श्रेष्ठ और समर्थ बना लो तो सारा दिन वर्तमान समय श्रेष्ठ रहेगा और भविष्य सतयुगी दुनिया में भी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी। अच्छा ओम शांति।